हरे कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 14 वर्स नंबर 9। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगल आचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पति गोपीश गोपिका कांता राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता मात की जय हो। अध्याय 14 जिसका नाम है प्रकृति के तीन गुण। भौतिक प्रकृति में जो तीन गुण मनुष्य को बांधते हैं उसके विषय में भगवान इस अध्याय में हमें बताते हैं। अभी हम श्लोक नंबर 9 पढ़ रहे हैं, कृपया मेरे साथ साथ उच्चारण कीजिए। भगवान कहते हैं, सत्वं सुखे संजयति रजः कर्माणि भारत, ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्माणि भारत, ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्माणि भारत, ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। शब्दात् सत्वम सुखे संजयति। संजयति मतलब बांधता है। भले ही सत्वगुण जो है वो निर्मल है, क्योंकि पहले भगवान ने बताया कि तत्र सत्वम निर्मलत्व। निर्मल का मतलब है कि उसके अंदर कोई अपराध नहीं होता, उसके अंदर अज्ञानता नहीं होती, परंतु फिर भी वो बांधने वाला है, क्योंकि जब भौतिक प्रकृति में है अर्थात वो हमें बांध देता है। किससे बांधता है? पहले भगवान ने बताया, मतलब पहले भगवान ने जो अभी तीन श्लोक पिछले बताए ना, उनको यहाँ पर संक्षिप्त में करके बताया। अभी हम थोड़ा पीछे से पढ़ेंगे, पहले इसको देखते हैं। सत्वम सुखे संजयति, तो जो सत्व गुण है जीव को सुख से बांधता है। रज कर्माणि भारत, रजोगुण कर्म से बांधता है, सकाम कर्म, और करो और मेहनत करो और मेहनत, वॉक 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 वॉक, तो ज्यादा से ज्यादा कार्य करना है मुझे, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा अर्जित करना है। और उसके बाद भगवान कहते हैं ज्ञानम आवृत्य तूतन तमः, ज्ञानम आवृत्य, क्योंकि ज्ञान को ढक देता है तू, मतलब लेकिन, अब रजोगुण और तमोगुण में फिर भी थोड़ा बहुत ज्ञान होता है, क्योंकि हम उसके द्वारा सुख तो प्राप्त करेंगे ना। सत्वगुण में हम कार्य करेंगे तो उसके द्वारा हमारा शरीर इस लोक में या फिर आगे के लोक में सुखी होगा, रजोगुण में कार्य करेंगे तो इस भौतिक लोक में तो एटलीस्ट सुखी होंगे, है ना, धन अर्जित करेंगे और अपनी विशेष पूरी करेंगे, वस्तुएं अर्जित करेंगे तो। लेकिन भगवान यहाँ पर कहते हैं ज्ञानम आवृत्य तू तमः, ये जो तमोगुण है वो तो ज्ञान को ढक देता है, फिर वो कैसे बांधता है, भगवान कहते हैं प्रमादे संजयत्युत, वो तो पागलपन से बांध देता है, केवल पागलपन है कि वो सोचता है सत्वगुण में जो तमोगुणी होता है वो केवल आलसी होता है, उसको पता होता है करना है करना है, मुझे ये कार्य मुझे ये करना ही है, परंतु फिर भी इतना आलस्य होता है उसको, इतना पागलपन होता है, एक तो पागल होता है, दूसरा इतनी सुस्ती होती है, करता नहीं है वो। तो भगवान कहते हैं क्योंकि ज्ञान को ढक दिया है इसलिए वो पागलपन से उसको बांध देता है। अनुवाद देखिए, हे भरत पुत्र, सत्वगुण मनुष्य को सुख से बांधता है, रजोगुण सकाम कर्म से बांधता है, और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढक कर उसे पागलपन से बांधता है। श्रील प्रभुपाद जी अत्यंत ही सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं सत्वगुणी पुरुष अपने कर्म या बौद्धिक वृत्ति से उसी तरह संतुष्ट रहता है जिस प्रकार दार्शनिक, वैज्ञानिक या शिक्षक अपनी अपनी विद्याओं में निरत रहकर संतुष्ट रहते हैं। सत्वगुणी व्यक्ति सोचता है कि कितना आनंद से जीता हूं मैं, मतलब उसके पास इतना सारा ज्ञान होता है और ज्ञान के द्वारा वो बौद्धिक वृत्ति होती है ना, उसकी बुद्धि उसकी इतनी तेज होती है और वो अपना कार्य इस प्रकार से सुनिश्चित एकदम अच्छे ढंग से करता है, तो फिर उसको ऐसा संतुष्टि लगती है, उसको ऐसा लगता है। रजोगुणी और तमोगुणी लोग के पास ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं, इसलिए वो परेशान है संसार में। मैं तो सत्वगुणी हूँ, मैं तो सत्वगुण में रहकर कार्य करता हूँ, तो अपने कर्म और बौद्धिक वृत्ति से बहुत संतुष्ट होते हैं, इतना आनंद उनको लगता है कि हमारे जीवन में है। हालांकि इस संसार में अगर आप सुखी हो तो ये सबसे बड़ी अज्ञानता है, क्योंकि हम भगवान श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं दिस ह्यूमन बॉडी इज मेंट फॉर फील यू दैट यू आर फर्स्टेड इन दिस मेटेरियल वर्ल्ड, आपको यह रियलाइज कराने के लिए कि यह भौतिक जगत आपके लिए दुखों का घर है, इसीलिए ये आपको मनुष्य जीवन मिला है। यदि इस भौतिक जगत में आपको आनंद की अनुभूति हो रही है तो ये सबसे बड़ा आपका अपराध है, ये सबसे बड़ा अज्ञान है कि इस भौतिक जगत में रहकर आप आनंदित हो रहे हो, संतुष्ट हो रहे हो। तो यहाँ पर ये अगर भौतिक जगत मतलब सत्वगुण में रहकर अगर आप स्वर्ग लोक में भी जा रहे हो तो भी भौतिक जगत में ही रहकर, क्षीण पुण्य मृत्यु लोक मिशन थी, तो फिर आप आनंद नहीं ले सकते हो इस भौतिक जगत में। लेकिन कुछ यहाँ श्री प्रभुपाद जी नाम दे रहे हैं, जिस प्रकार दार्शनिक, वैज्ञानिक या शिक्षक, ये सब जो साइंटिस्ट होते हैं, जो वैज्ञानिक होते हैं, फिलोसोफर होते हैं, जो बहुत ज्यादा एजुकेटेड होते हैं, वो समझते हैं वी आर सो मच एडवांस्ड, है ना, हमने तो कितना ज्यादा उन्नति कर ली है, हम तो कितने ज्यादा ज्ञानी हैं, हमने तो कितनी अपने कार्य कितने अच्छे तरीके से किए हुए हैं, तो फिर उनको ऐसा वो अपनी अपनी विद्याओं में निरत रहकर संतुष्ट रहते हैं, उनको एकदम रिलैक्स होते हैं, वो सोचते हैं हम बिल्कुल सही हैं, संतुष्ट हैं, तो वो क्या करते हैं, सत्वम सुखी संजयति, वो भले ही सत्वगुण में कार्य कर रहे हैं परंतु सुख से बंध जाते हैं। उसके बाद श्रील प्रभुपाद जी रजोगुण के विषय में कहते हैं, रज कर्माणि भारत, रजोगुणी व्यक्ति सकाम कर्म में लग सकता है, वह यथासंभव धन प्राप्त करके उससे उत्तम कार्यों में व्यय करता है। मतलब वो रजोगुणी होता है, वो क्या करता है, सकाम कर्म करता है, ये करना है मुझे, ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो फिर ऐसे करके वर्क 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 पहले कार्य करता है करता है करता है, और फिर इस प्रकार कार्य करने से उसको बहुत सारा धन प्राप्त होता है, क्योंकि उसने कार्य इसी इच्छा से किया ना कि मैं बहुत ज्यादा धन। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, ये जो रजोगुणी व्यक्ति होता है सकाम कर्म में लग सकता है, वह यथासंभव धन प्राप्त करके, और फिर क्या करता है, वो सोचता है अभी मेरे पास बहुत सारा धन अर्जित हो गया है ना, तो उत्तम कार्य करना शुरू करता है। कभी कभी वह अस्पताल खोलता है और यथार्थ संस्थाओं को दान देता है। मतलब वो अपने धन से अब अच्छे कार्य करता है। क्या अच्छे कार्य करता है, हॉस्पिटल्स खोलता है और जो संस्थाएं हैं अलग अलग उनको दान भी देता है। तो यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि वो तो अच्छा काम करता है, तो फिर उसके लिए अच्छा ही हुआ ना, ये अच्छा काम कर रहा है। कभी 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 ऐसा भी बोलते हैं, श्रील प्रभुपाद से कुछ लोग बोलते थे कि ये हरे कृष्ण मूवमेंट क्या है, वो तो सिर्फ हरे कृष्ण करते रहते हैं, कोई है ना समाज सेवा के कार्य नहीं करते, सोशल वर्क्स नहीं करते हैं, तो सोशल वर्क्स भी उनको करने चाहिए ना, वो लोग तो बिल्कुल करते ही नहीं है कोई भी समाज सेवा के काम, हॉस्पिटल्स नहीं खुलवाते हैं, स्कूल भी नहीं खुलवाते हैं और संस्थाओं को दान नहीं देते हैं, ऐसे गरीबों का कुछ भी। तो श्रील प्रभुपाद जी ने कहा गरीब को दान देना अच्छा है कि उसको, क्योंकि उसकी प्रॉब्लम इतनी है कि वो गरीब है इसलिए वो दुखी है, तो उसको धन दिया जाए ये अच्छी बात है। लेकिन आप मुझे ये बताओ कि जो जिनके पास धन है, जिनके पास गरीबी नहीं है, जिनके पास ऑलरेडी धन है, क्या वो सुखी है, क्या वो इस संसार में रह रहे हैं, तो क्या वो आज किसी धनी से पूछ के देखो क्या वो सुखी है। अगर आप समझते हो कि हॉस्पिटल्स, कोई बीमार है तो हॉस्पिटल्स अच्छा है कि वो उनके लिए हॉस्पिटल्स हैं, तो वहां पर जाके वो ट्रीटमेंट कराएगा और वो उसका रोग दूर हो जाएगा, उसकी प्रॉब्लम ये है कि वो बीमार है इसलिए उसको हॉस्पिटल चाहिए, लेकिन जो स्वस्थ हैं क्या वो सुखी हैं। तो यहां पर कहने का अर्थ ये है कि जीव की वास्तविक प्रॉब्लम क्या है कि इस भौतिक जगत में है तो वो दुखी है, इस भौतिक जगत से जब तक वो जुड़ा रहेगा, इस भौतिक जगत में जब तक वो आसक्ति चला रखेगा तब तक वो दुखी रहेगा, चाहे उसके पास धन हो या ना हो, चाहे वो स्वस्थ हो या ना हो, चाहे उसके पास कोई भी भौतिक वस्तु हो या ना हो, चाहे संसार का सबसे धनी व्यक्ति भी होगा, यदि वो कृष्ण भावना भावित नहीं है तो वो दुखी रहेगा। तो पूरा संसार कृष्ण भावना के अभाव के कारण दुखी है। आज जो हमारी आत्मा है उसको भूख है, वो तड़प रही है अपने वास्तविक लक्ष्य की ओर जाने के लिए, अपने वास्तविक कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने के लिए। तो वास्तविक संसार का जो दुख है वो दुख दूर करने के लिए हमने ये संस्था खोली है, क्योंकि हम चाहे कितने ही स्कूल्स खुलवा दें, हॉस्पिटल्स खुलवा दें, कितने ही संस्थाओं को बहुत सारा धन दे दें, लेकिन मनुष्य तब तक सुखी हो नहीं सकता जब तक कि वो वास्तविक लक्ष्य को, जीवन के वास्तविक लक्ष्य की ओर अग्रसर न हो, जब तक वो कृष्ण से जुड़ नहीं जाता है, जब तक वो भगवान के पवित्र नाम का स्मरण नहीं करता है, जप नहीं करता है, भगवान की कथाओं से नहीं जुड़ता है। तो इसलिए हम संपूर्ण जीव आत्माओं को आनंदित करने के लिए यह कृष्ण भावना ये इसका संस्था का स्टार्ट किया है। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं, कभी कभी वह हॉस्पिटल खोलते हैं और यथार्थ संस्थान को दान देते हैं जो रजोगुणी होते हैं, तो वो इसी से ही बंधे हुए होते हैं। रज कर्माणि भारत, वो आंख ही नहीं सोच सकते कि अब रजोगुण, क्योंकि रजोगुण के कारण उनको कार्य करना पड़ता है, उसी में लगे रहते हैं। और आगे कहते हैं, ज्ञानमावृत्य तूतम, ज्ञानम आवृत्य तूतम, क्योंकि कि जो तमोगुण है वो ज्ञान को ही ढक देता है। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं तमोगुण में रहकर, लेकिन तमोगुण तो ज्ञान को ही ढक लेता है, तो तमोगुण में रहकर जो मनुष्य जो भी करता है वह ना तो उसके लिए और ना ही अन्य के लिए हितकर होता है। वो तमोगुणी व्यक्ति वो अपना भी भला नहीं सोच सकता, अपने शरीर का भला भी नहीं सोच सकता, तो भला दूसरों का क्या भला सोचेगा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। मूकं कुरु तु वाचालं पंखुं लंघयति गिरं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं। चैप्टर 14 प्रकृति के तीन गुण, थ्री मोड्स ऑफ मेटेरियल नेचर। भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बता रहे हैं, इसलिए भगवान ने यह चैप्टर शुरू करने से पहले ही बोला परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानाम ज्ञानमुत्तमम। जितना भी ज्ञान है उन ज्ञानों में सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ ज्ञान अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ। और इसको जानने के क्या होगा, भगवान कहते हैं यज ज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धिम मितो गता, कि इसी ज्ञान को प्राप्त करने से, इसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। जितना भी आज तक जिस जिसको परम सिद्धि प्राप्त हुई है वो ये ज्ञान प्राप्त करने से, ये ज्ञान ऐसा है, ये जो तीन गुणों का ज्ञान है जब तक उसको आप नहीं हासिल कर लेते हो, जब तक ये तीन गुणों से ऊपर नहीं उठ जाते हो तब तक सिद्धि प्राप्त करना, अर्थात सिद्धि क्या है, कृष्ण प्रेम, तो वो प्राप्त करना संभव नहीं है। उसके बाद भगवान ने बताया श्लोक नंबर 2 में इदं ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधर्म्यम आगता, जो इस ज्ञान का आश्रय ग्रहण करेगा तो फिर मेरे जैसे स्वभाव को प्राप्त कर लेगा। अर्थात मेरे जैसे मतलब भगवान क्या कह रहे हैं कि मेरा जैसा स्वभाव, कैसा, सर्गेपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ते, जब संसार की सृष्टि होगी तो उसे जन्म नहीं लेना पड़ेगा। क्योंकि अब हम संसार में क्यों जन्म ले रहे हैं, क्योंकि हम पर यह गुण जो है वो अटैक करते हैं, ये गुण जो है उसमें बंधे हुए हैं, तभी तो हम संसार में, अगर रजोगुण के कारण हमें आसक्ति होती है संसार में, तो जैसी आसक्ति होती है तो फिर हमें दूसरा जन्म लेना पड़ता है, और सत्वगुण हमें सुख से बांधता है, रजोगुण हमें कर्म से बांधता है, तमोगुण हमें पागलपन से बांधता है, तो बंधे हुए हैं संसार में, आसक्त हैं, जबी तो हमारा जन्म होता है। लेकिन अगर जैसे ही हम इन गुणों से ऊपर उठेंगे तो हमारी आसक्ति भौतिक वस्तुओं में नहीं होगी बल्कि भगवान में होगी, तो फिर भगवान कहते हैं यद्गत्वा न निवर्तन्ते, फिर आप ऐसी जगह पे चले जाओगे कि वापस आपको आना नहीं पड़ेगा। तो इसे भगवान कहते हैं सर्गे भी नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ते, और जब आपका जन्म ही नहीं होगा तो फिर जब सृष्टि का लय होगा, प्रलय होगा, तो फिर आपको विचलित होने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप जानते हो कि इस संसार में से तो आपका कोई मतलब यहाँ पर भगवान ये भी बता रहे हैं कि जब अभी आप संसार में हो और हो तो जाहिर सी बात है प्रलय होगी, प्रलय मतलब आपकी मृत्यु होगी, तो आप विचलित नहीं होगे उस टर्म पर, आपको पता है कि मेरी मृत्यु के बाद मुझे अपने वास्तविक लक्ष्य की ओर जाना है, मेरी मृत्यु के बाद मुझे कृष्ण प्राप्ति। अगर मतलब कितना भी भक्त मतलब जो इन तीन गुणों से आगे निकल गया होगा उस वो विचलित नहीं होगा प्रलय के टाइम पर, और जब अब वो विचलित नहीं होगा तो वो कहाँ जाएगा, भगवत प्राप्ति, और फिर वापस जब सृष्टि होगी तो उसको जन्म नहीं लेना पड़ेगा। आगे भगवान कहते हैं श्लोक नंबर 3 में बहुत ही सुंदर भगवान इस संसार की उत्पत्ति का कारण बता रहे हैं, श्लोक नंबर 3 और श्लोक नंबर 4 में कि संसार कैसे उत्पन्न किया। भगवान कहते हैं मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहं संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। ये जो महत् ब्रह्म है यानी जो ये 24 तत्व जिससे ये भौतिक प्रकृति बनी हुई है, तस्मिन गर्भम ददामि हम, मैं इसको गर्भ प्रदान करता हूँ, मैं इसको गर्भस्थ करता हूँ। भौतिक प्रकृति में जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जीव हैं, उनके होने का कारण मैं हूँ। तो यहाँ भगवान बताते हैं कि मैं इसको इस ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूँ, जिससे समस्त जीवों का जन्म संभव होता है, यानी कि सारे जीवों का कारण मैं हूँ, भगवान कहते हैं। तो हमारे संसार में होने का कारण कृष्ण ने कहा, अहम तस्मिन गर्भम ददामि हम, और इसी बात को आगे बताया श्लोक नंबर 4 में, सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्तिया तासां ब्रह्म महत्योनि अहम बीज प्रदपिता। कि जितनी भी संसार में योनियां हैं, 84 लाख योनियां, वो किस तरह से आई हैं, मूर्तयः संभवन्तिया तासाम ब्रह्म महत्योनिर अहम बीज प्रदत्त पिता, वास्तव में उनका बीज प्रदान करने वाला पिता मैं हूँ। जिस जिस जीव ने जैसे जैसे कार्य किए हैं, उनको उसी प्रकार की योनि मैंने प्रदान की है। तो वास्तव में भगवान यहाँ पर बता रहे हैं, आई एम द रियल क्रिएटर ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। जितने पहले तो भगवान ने बोला ये महत ब्रह्म को ही मैं गर्भस्थ करता हूँ, और अब भगवान बता रहे हैं कि जितनी भी योनियां हैं उनका जो अहम बीज प्रदा पिता, बीज देने वाला पिता मैं हूँ। अब जब भगवान हमारे पिता हैं, भगवान ही ने हमारा बीज दिया है, तो फिर हम भौतिक जगत में क्यों जकड़े हुए हैं, उसका कारण श्लोक नंबर 5 से भगवान ने बताना शुरू किया। भगवान कहते हैं, सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा निवत्नन्ति महाबाहो देही देही नमव्ययम्। तो जैसे ही जीव को शरीर मिलता है, जो भी योनि मिलती है, तो क्या होता है, वो प्रकृति में आ जाती है और फिर 3 गुणों का प्रभाव चालू हो जाता है। क्यों चालू हो जाता है, क्योंकि गुणा प्रकृति संभवा, ये जो प्रकृति है वो 3 गुणों से युक्त है, तो इसके अंदर 3 गुण हैं, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, और ये तीनों गुण क्या करते हैं, निभत्नन्ति महाबाहो, ये बांध देते हैं देहे देहिनम अव्ययम्। ये आत्मा जो है वो शाश्वत है, अव्यय है, परंतु जब ये प्रकृति के संसर्ग में आती है, क्योंकि उन्होंने अपनी इच्छा के अनुसार योनि प्राप्त हुई है, और जब वो शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है, तो वह इन गुणों से बंध जाता है। तो यहाँ पर भगवान ने सिर्फ इतना बताया कि तीनों गुणों से बंध जाता है, और श्लोक नंबर 6, 7 और 8 में भगवान हमें बताएंगे कि 3 गुणों में कौन कौन से गुणों में किस तरह से बंधता है। मतलब 2 लाइनें होती है ना, तो पहले लाइन में गुण का लक्षण बताएंगे और दूसरे लाइन में ये कैसे बंधता है या किस तरह से वो गुण उसको बांधता है उसके विषय में। तो पहले बताते भगवान श्लोक नंबर 6 में, तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम। कि जो सत्वगुण है वो निर्मल है सबसे ज्यादा, मतलब उसके भौतिक जगत में शुद्ध होने के कारण ये बिल्कुल शुद्ध है, इसके अंदर अपराध नहीं है, सत्वम निर्मलत्वम, और ये प्रकाशकम प्रकाश प्रदान करता है, क्योंकि प्रकाश जब होता है तो ज्ञान प्राप्त होता है, तो ज्ञान के द्वारा क्या प्राप्त होता है, सुख, क्योंकि अज्ञानता हमारे दुख का कारण है ना, तो सुख संगेन भत्नाति ज्ञान संगेन चानक। तो भगवान उसे बताते हैं कि वो सुख से बंध देता है, क्योंकि सत्वगुणी व्यक्ति के पास ज्ञान ज्यादा होता है, तो अधिक ज्ञान के कारण वो दूसरे लोगों के अपेक्षा कम दुखी होता है, क्योंकि जिसके पास ज्यादा ज्ञान होगा तो वो ना भौतिक वस्तुओं को इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं देगा, लेकिन इतना ज्यादा दुखी नहीं होगा, क्योंकि उसको पता होता है, ज्ञान होता है, और अधिक ज्ञान तथा सुख जो है ना उसका अधिक अधिक वो अनुभव करता है। और कठिनाई कब आती है कि जब उस सत्वगुणी मनुष्य के पास ज्यादा ज्ञान हो जाता है, तो उसे ऐसा अनुभव होता है कि वह ज्ञान में सबसे आगे और दूसरों से सबसे श्रेष्ठ है तो उसके अंदर एक अहंकार की वृत्ति आने लगी लग जाती है और इस प्रकार वो बच जाता है। जैसे बहुत सारे जैसे वैज्ञानिक हैं, फिलोसोफर हैं, उनमें से प्रत्येक को अपने ज्ञान का गर्व होता है। शिवपाल जी बता रहे हैं क्योंकि उनका रहन सहन जो है वो बहुत एडवांस होता है, इसलिए वो भौतिक सुख की अनुभूति होती है। उनको पता होता है कि भौतिक सुख कैसे प्राप्त किया जाए, उनके पास ज्ञान बहुत ज्यादा होता है ना। अभी तक वो वास्तविक शुद्ध सत्व में नहीं पहुंचे। शुद्ध सत्व में क्या, आप किस तरह से सुखी रहो उसका ज्ञान नहीं आपको चाहिए होता है। शुद्ध सत्व जब तीनों गुणों को आप लांग देते हो ना, तब आपको सुख नहीं चाहिए होता है। तब आपको क्या चाहिए होता है कि मैं कैसे कृष्ण को सुखी करूं। ये एक अलग, ये विशुद्ध सत्व है। लेकिन जब तक यहाँ श्री प्रभुपाद जी ने सत्व गुण के विषय में बताया कि जब तक इस प्रकार कर्म करते रहने का आकर्षण बना रहता है, तब तक उन्हें किसी न किसी प्रकार का शरीर धारण करना होता है। अब शरीर धारण करना ही सबसे बड़ा दुख है, क्योंकि बंधन हुआ ना ये, तो ये इस तरह से बंधन, चाहे वो स्वर्ग में भी चले जाते हैं, अच्छे जन्म को प्राप्त करते हैं, क्योंकि वो अपराध नहीं करते तो उनको खराब जन्म नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी बंधन तो बंधन है, चाहे वो सोने का हो या लोहे का। इसी जब वो इतने ज्यादा बंध जाते हैं कि उनकी कोई मुक्ति की नहीं होती है, कि वो वैकुंठ लोक में जाने की कोई संभावना नहीं होती है, वो वापिस संसार में आते हैं। कभी फिलोसोफर बन के आते हैं, कभी साइंटिस्ट बन के आते हैं, क्योंकि उनके पास ज्ञान होता है ना, तो उसी तरफ उनकी रुचि होती है। कभी कवि बनकर आते हैं, बारंबार जन्म मृत्यु के चक्कर में वो बनते रहते हैं। लेकिन माया मोह के कारण वे सोचते हैं कि इस प्रकार का जीवन आनंदप्रद है, वो इसी को आनंद समझते हैं। उनको ज्ञान होता है लेकिन वो इसी को आनंद समझते हैं कि इस संसार में रहकर ज्यादा से ज्यादा सुख कैसे प्राप्त किया जाए। ठीक, और उसके बाद भगवान ने बताया, रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवं तन्निभत्नान्ति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। ये रजोगुण के विषय में भगवान ने बहुत अच्छा बताया, रजो रागात्मकम विद्धि, कि ये जो रजोगुण है वो आकांक्षाओं या सकाम कर्म से उत्पन्न होता है। बस आकांक्षा है, काम से, हाँ आकांक्षा मतलब इच्छा के लिए। रजोगुण क्या है, इच्छा है, आकांक्षा, वॉन्ट 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 वॉन्ट, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। तो ये आकांक्षा से उत्पन्न होता है और जो चीज उसके पास नहीं होती है उसके लिए वो आसक्त होता है। लेकिन जो चीज उसके पास होती है ना, उसमें बहुत ज्यादा आसक्त होता है, कि उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है। रजोगुण में रागात्मक का मतलब, उनसे राग का मतलब होता है उसकी तरफ बहुत ही अनुराग होता है, उसका प्रेम होता है। जो कुछ होता है, रजोगुणी लोग अपनी वस्तुओं से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, और जो उनके पास नहीं है, यहाँ भगवान ने बताया तृष्णा संग समुद्भवम, उसके लिए उनको तृष्णा होती है कि ये भी मुझे मिलना चाहिए, ये तो है मेरे पास, उसकी और उसमें भी बहुत आ सकती है, लेकिन जो नहीं है वो भी मुझे चाहिए। तो फिर ये तृष्णा जो है वो कभी संतुष्ट नहीं होती है। संतुष्टि का मतलब क्या है, कि आपके पास जो है उसमें संतुष्टि, आसक्ति और संतुष्टि में भी डिफरेंट है। आसक्ति का मतलब ये है कि मैं इसके बगैर नहीं रह सकता, और संतुष्टि का मतलब कृष्ण ने मुझे जो दिया है उसमें मैं संतुष्ट हूँ। तो रजोगुणी क्या होता है, उसको तो अपनी वस्तुओं से ज्यादा बहुत ज्यादा आसक्ति, रजो रागात्मकम विद्धि, उसके अंदर बहुत राग होता है, और तृष्णा संग समुद्भवम, और जो नहीं होता है उसके अंदर बहुत ज्यादा तृष्णा होती है। ये लक्षण है और भगवान उसको बता रहे हैं आगे कि वो कैसे बांधता है, तन निबत्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। फिर उसको बहुत बहुत कार्य करना पड़ता है। रजोगुण का लक्षण कैसा है, इसको ऐसे बताते हैं www, बस इसमें क्या होता है कि बस डब्ल्यू से क्या है, पहला वॉन्ट, बस मुझे आई वॉन्ट दिस, चाहिए 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 चाहिए, और उसके बाद उसको क्या करेगा, प्राप्त करने के लिए, क्योंकि वो रजोगुणी है तो काम करेगा।
फिर वॉक 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 सारा दिन उसको ऐसा लगेगा कि मुझे इतना काम करना है, इतनी ज्यादा स्ट्रगल करनी है, इतना ज्यादा वर्क वर्क करना है जिससे मैं बहुत ज्यादा धन अर्जित करूं। बहुत ज्यादा धन अर्जित करने के लिए जब वो बहुत सारा कार्य अपना फैला देगा तो उसको बहुत ज्यादा डब्ल्यू से वरी, बहुत ज्यादा वरी 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 परेशान हो जाएगा, ये काम वो कंप्लीट नहीं हो रहा है, ये शेयर मैंने खरीदे थे वो है ना लॉस हो रहा है, ये कार्य में लॉस हो रहा है, किसी में ये हो रहा है, किसी ने कोई जो हमारे बिजनेस में पार्टनर्स होते हैं वो हमारे साथ धोखा वोखा कर लेते हैं, तो फिर क्या बहुत सारी वरीज होती हैं उसके पास, और उसके पास क्या डब्ल्यू वीप रोना पड़ता है, उसको इतनी सारी मेहनत के बाद क्या करना पड़ता है दुखी होना पड़ता है। तो इसको ऐसे बताते हैं वर्क वॉन्ट वर्क वरी एंड वीप, इसी तरह से वो अपने जीवन को गुजार रहा होता है, बहुत मेहनत करता है, बहुत ज्यादा मेहनत करता है, क्यों करता है क्योंकि रागात्मकम व्यक्ति, वो बहुत ज्यादा वस्तुओं को प्राप्त करना चाहता है, जो उसके पास नहीं है उनको प्राप्त करना चाहता है और जो उसके पास है उनको मेंटेन करना चाहता है, तो भी उसको बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत पड़ती है। लेकिन भागवतम महापुराण में बताया जाता है कि मनुष्य जो अपनी वस्तुओं में बहुत ज्यादा आसक्त होता है, भौतिक वस्तुओं में बहुत ज्यादा आसक्त होता है, भले भौतिक रिलेशन ही क्यों ना हो, जैसे घर परिवार इसमें बहुत ज्यादा जो आसक्त होता है उसको क्या कहा गया है कम बुद्धि, ग्रह मेदी उसको कहा गया है, वो बहुत ज्यादा कम बुद्धि है, क्योंकि आपको मनुष्य जीवन मिला है तो इसमें आपको बैलेंस रखना चाहिए। भले ही आप पिता हो, आप माता हो, तो आपको इसका मतलब ये थोड़े है कि खाली बस वही कार्य करना है जो आप आपका अगर इस भौतिक शरीर से रिलेटेड कोई आपके कर्तव्य हैं, तो आत्मा से रिलेटेड भी तो आपके कर्तव्य हैं। यदि मनुष्य बनकर भी आप आत्मा से रिलेटेड अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं करोगे तो भला आपके मनुष्य होने का क्या फायदा। इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं कि अपने जीवन में, क्योंकि भगवान ने आपको 24 आवर्स दिए ना, 24 आवर्स को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करो कि आप सब सारी चीज कर सको। 8 घंटे आप शरीर के लिए दो, 8 घंटे आप आत्मा की उन्नति के लिए कार्य करो, और 8 घंटे जो हैं वो जॉब आप अपनी करो। इस तरह से याद है आप करोगे तो क्या होगा, बैलेंस बना रहेगा आपके जीवन में। लेकिन आजकल जो है जिस प्रकार ना किसी को नशा करने की आदत हो जाती है उसको क्या बोलते हैं अल्कोहलिक, यानी कि वो उसको बस अपना नशा पूरा करना ही सही कार्य है कि बस मुझे किसी भी तरह से अपना ये नशा पूरा करना है। उसी तरह आज के लोग क्या हैं, आज का जो समाज है उसमें 99% क्या हो गए हैं, वर्कोहलिक हो गए, बस मुझे कार्य करना है, कार्य करना है, कार्य करना है, कार्य इस तरह से कार्य करते करते वॉक 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 करते करते बहुत ज्यादा थक जाते हैं, और जब घर में आते हैं ना तो इतने थके हुए होते हैं कि वो कुछ नहीं करना चाहते, बस उठाते रिमोट कंट्रोलर और टीवी चालू करते हैं। और टीवी में क्या है, 1 घंटे का कार्यक्रम होगा, 1 घंटे का कोई ड्रामा होगा, उसमें जो 52 वो क्या करेंगे, 1 घंटे का ड्रामा नहीं दिखाएंगे, 52 मिनट का आपको ड्रामा दिखाएंगे और बाकी 8 मिनट रखेंगे किसके लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए। और जो उसने प्रोग्राम बनाया है उसमें जितना पैसा उसने 52 मिनट के ड्रामे में नहीं खर्च किया उतना पैसा वो 8 मिनट के एडवर्टाइजमेंट में खत्म करता है ना। क्यों, क्योंकि ये जो एडवर्टाइजमेंट है वो क्या है, कॉल फॉर एक्शन। जैसे हम प्रवचन में कैसे बताते हैं कि ये हुआ था, भगवान ने ये किया, ये बताया, ये कहा, और फिर कॉल फॉर एक्शन क्या है कि आपको सुबह मंगला आरती पे उठना है, आपको 16 माला जप करनी है, 4 नियम का पालन करना है। तो इसको ये जो एडवर्टाइजमेंट है उसको ये लोग इतना आकर्षित तरीके से बताते हैं, इतना आकर्षित तरीके से बताते हैं क्योंकि उसी से उनको है ना फायदा होने वाला है। तो उसमें वो इस तरह से दिखाते हैं कि एक लड़का होगा, नौजवान लड़का खड़ा होगा और यहां से बहुत सारी लड़कियां जा रही होंगी, उसकी ओर देखेंगी नहीं, उसको बिल्कुल इम्पोर्टेंस नहीं देंगी, और उधर से एक फिल्म स्टार आ रहा होगा, फिल्म स्टार को देख के
वो बहुत ज्यादा आकर्षित होंगी और सब जाएंगी उसको आलिंगन करेंगी, उसको प्यार करेंगी, और तो फिर वो जो लड़का होगा वो इतना मायूस हो जाएगा कि मेरे अंदर तो कोई अट्रैक्शन ही नहीं है, मुझे तो सब कोई इग्नोर करते हैं। फिर वो फिल्म स्टार उस लड़के के पास आएगा और बोलेगा, तुमको मेरे आकर्षण का राज जानना है? उसका राज है तो वो दिखा देगा कि ये फेयर एंड लवली है, ये लगाओ तुम भी आकर्षित हो जाओगे, और ये कल लगा क्या जाएगा और सारी लड़कियां उसकी ओर आकर्षित हो जाएंगी। तो इस प्रकार का जो एडवर्टाइजमेंट है वो जितने भी स्त्रियां हैं और पुरुष हैं दोनों की बुद्धि का अपमान है वास्तव में, है ना। ऐसा कोई स्त्री यदि केवल शैम्पू या फिर क्रीम के कारण किसी व्यक्ति के ऊपर आकर्षित हो रही है तो धिक्कार है इसी बुद्धि पर। और अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि खाली मैं क्रीम और शैम्पू में अच्छा लगा दूंगा तो मैं आकर्षित हो जाऊंगा, तो भी सोच ऐसी सोच मनुष्य धिक्कार है। तो वास्तव में वो सोचते हैं कि सत्य में ऐसा ही होगा, इसलिए वो यही करना शुरू हो जाते हैं। हालांकि ये सत्य थोड़े ऐसा थोड़े होने वाला है, ये तो बस ऐसे आपको आकर्षित करने के लिए, ये एडवर्टाइजमेंट क्या है वास्तव में, ये आपको ये बताने के लिए है कि आपके पास जो कुछ है वो कितना निकम्मा है, ये बताएं वास्तव में। आपके पास जो घड़ी है बिल्कुल खराब है, आपके पास जो शूज हैं वो बिल्कुल खराब है, आपके पास जो पर्स है वो बिल्कुल खराब है, आपके पास जो कॉस्मेटिक्स है वो बिल्कुल खराब है, इस सबको छोड़ दो, तो क्या करो, नया खरीदो, जो हम बता रहे हैं वो खरीदो। तो आज का मनुष्य जो रजोगुणी है वो केवल यही कर रहा है क्या, WWW वर्क वॉन्ट वरी एंड वीप। लेकिन ये तो जैसे हम बता रहे हैं ये पूरा जीवन की क्रिया बता रहे हैं कि पूरे जीवन में ऐसा ही हो रहा है, ये चाहिए बस इसके लिए कार्य करो, इसके लिए कार्य करो, जो वस्तु हम तो छोटी सी मिसाल दे रहे हैं फेयर एंड लवली की, लेकिन कोई बहुत सारी वस्तुएं बस उसको ये चाहिए ये चाहिए, ये तो पूरा अपने जीवन लेवल पे है। लेकिन अगर पूरे दिनचर्या के हिसाब से भी अगर हम देखें कि एक दिन में एक व्यक्ति की क्या जीवनचर्या है, तो क्या है, WWS, W से वर्क, वर्क 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 वर्क, वो खाली कार्य करता रहे, कार्य कार्य, सुबह से लेकर रात तक गधे की तरह कार्य करेगा, और घर में आगे क्या करेगा, वॉच वॉच टीवी देखेगा, टीवी देख के क्या करेगा कि ये चीज लेनी चाहिए मुझे, फिर जाएगा शॉपिंग, शॉप शॉप शॉप, फिर शॉपिंग करेगा तो वापस से उसको और भी शॉपिंग करनी होगी क्योंकि वापस से उसको और चीजें खरीदनी होंगी ना, तो उसके लिए और भी वर्क करेगा, और भी और वर्क करने के बाद और ज्यादा थक जाएगा, फिर वापस जाकर टीवी देखेगा, उसको वापस से और चीजें चाहिए होंगी। इस तरह करते 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 ये अपना पूरा जीवन इसी में क्या है, ये WWS यानी दुनिया भर में वर्ल्ड वाइड स्टुपिडिटी, दुनिया भर में सबसे बड़ी बेवकूफ यही चल रही है, रजोगुण में जीव जी रहा है। क्योंकि ये रजोगुण जो है वो कलयुग का सबसे प्रमुख लक्षण है, वही जीव को क्या ये बताता है कि आपको बहुत ज्यादा कार्य करना है क्योंकि आपको बहुत ज्यादा अर्जित कर रहा है। वास्तव में रजोगुण कभी हमें संतुष्ट रहने नहीं देता, रजोगुण में संतुष्टि आती नहीं है, आकांक्षाएं इतनी बड़ी हुई होती है, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, उसके लिए ये करना है ये करना है ये करना है, और फिर इसी में पूरा जीवन अपना व्यस्त कर लेते हैं और वास्तविक जीवन के लक्ष्य की ओर बढ़ते ही नहीं है। तो यहाँ भगवान ने कहा रजह कर्माणि भारत, कि रजोगुण जो है वो हमें कर्म से बांध देता है। आगे भगवान कहते हैं ज्ञानम आवृत्य तो तमह प्रमादेश संजयतुत, लेकिन जो तमोगुण होता है वो क्या करता है, ज्ञान को ढक देता है अज्ञानता की। अभी तमोगुण में रहकर आप कोई भी कार्य करोगे उससे किसी का भी फायदा ना होगा, ना आपका अपना, ना आपके शरीर का, ना ही आपके अपनों का, किसी का भी फायदा नहीं होगा। अभी तमोगुण के अभी ये जो सारे गुण हैं वो इस प्रकृति में हैं, तो डेफिनेटली हम सब इनके प्रभाव, इन सबका प्रभाव हम सब पर होगा, लेकिन इनका प्रभाव उतना ही होना चाहिए जितना की जरूरत। जैसे अब सोना है, तमोगुण में सोते हैं, तो हर एक जीव की क्योंकि ये भौतिक शरीर है तो उसको सोना पड़ता है, लेकिन उसका मतलब ये थोड़े कि वो इतने आठ आठ नौ नौ दस दस घंटे सोता रहे। जब तक हम इस प्रकृति में हैं, इस शरीर में, भौतिक शरीर में हैं, हम इन गुणों को कंट्रोल बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन इनको इस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं कि सत्वगुण को विकसित करें, क्योंकि जैसे सत्वगुण विकसित होगा ज्ञान उत्पन्न होगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर तमोगुण में और रजोगुण में रहकर ही खाली इच्छाएं पूरी करते रहेंगे और प्रमाद यानी पागलपन में रहकर कार्य करेंगे, फिर तो हमारे मुक्ति की कोई आशा ही नहीं रहेगी ना, फिर तो हम बारम्बार जन्म में मरण में फंसे रहेंगे। तो ये जो तमोगुण है वो पागलपन से आलस्य से वो कोई काम करने ही नहीं देता, रजोगुण में रहकर भी काम करने नहीं देता, क्योंकि उसको आज नहीं कर रहा हूँ कल करूंगा आज। और तमोगुणी व्यक्ति तो ऐसे हैं, उनको कुछ भी काम करने का दिल नहीं करता, बस सुस्ती 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 करते हैं, और अज्ञानता इतनी ज्यादा होती है कि वो भला बुरा समझते नहीं है, शराब पीना शुरू कर देते हैं, क्योंकि फर्स्टेड होते, कार्य किया नहीं उन्होंने कभी, तो फिर उनको पता ही नहीं है कि दुख खत्म कैसे करें, तो फिर दुख खत्म करने के लिए भी वो अज्ञानजन्य शराब पीना शुरू कर देते हैं, या फिर सोचते हैं कि अब क्योंकि उन्होंने काम नहीं किया, धन अर्जित नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, ना उन्होंने भक्ति की, तो फिर वो गलत तरीके से संतुष्ट, क्योंकि संतुष्टि तो जीव आत्मा का आवश्यकता है, तो वो गलत तरीके से संतुष्टि प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये तीन गुण किस प्रकार से कार्य करते हैं उसको हम एक छोटे से एग्जाम्पल से समझेंगे। कि मानो आप एक थिएटर में मूवी देख रहे हो, और अचानक वहां पर आग लग जाती है, तो कुछ लोग क्या करेंगे, बहुत चीखेंगे, ये हो गया वो हो गया, भागना शुरू कर देंगे, और भागेंगे क्या, बहुत सारा पैनिक हो जाएगा, वो गिरेगा इसके ऊपर, वो गिरेगा, और वो इस तरह से शोर करते हुए इधर उधर जाएंगे, कुछ मतलब एक्शन करेंगे, मगर वो एक्शन जरूरी नहीं है कि सही भी हो। और जो दूसरे होंगे कुछ क्या करेंगे, वो इतना ज्यादा परेशान हो जाएंगे, पत्थर की तरह खड़े हो जाएंगे, अरे आग लग गई अभी क्या करें, कुछ कर ही नहीं सकेंगे, वो अपनी सीट से हिलेंगे ही नहीं। परंतु जो कुछ लोग ऐसे होंगे जो बुद्धिमान होंगे, वो क्या सोचेंगे कि यहाँ पर फायर एक्सटेंशन कहाँ पर है, कि जब फायर लगती है तो फिर हमें कौन से दरवाजे से निकलना है, तो वो वहां उसकी तरफ भागेंगे। तो ये कैसे है कि जो लोग दौड़ रहे हैं, चीख रहे हैं, आगे पीछे जा रहे हैं, वो कौन से गुण में है, रजोगुण में है, और जो एक जगह पे बैठे हुए हैं कुछ नहीं कर पा रहे वो क्या है, वो तमोगुण में है। और जो बुद्धिमान है वो जाने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो कहाँ जा रहे हैं, क्या वो वास्तविक लक्ष्य की ओर जा रहे हैं या कहाँ जा रहे हैं, ये उनको पता नहीं होता है, सिर्फ उनको ये पता होता है कि निकलना यहाँ से बस। तो ये तमोगुण, ये सारे गुण इस प्रकार से जीव को बांधते हैं। भगवान ने अभी तक यहाँ पर बताया है, यहाँ इतना ही, आगे भगवान इन गुणों से निकलने के विषय में भी बताएंगे, लेकिन यहाँ पर ये बात भी बता दी जाए कि ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति के ऊपर कंटिन्यूस एक ही गुण जो है वो असर करता है, अलग अलग समय में एक ही व्यक्ति अलग अलग गुण जो है उसके ऊपर असर करते हैं, और उसी की तरह वो एक्ट करता है, वो भगवान हमें कल समझाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा, मेरे लिए प्रार्थना करना मत भूलिएगा। हरे कृष्ण।